इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे, मक्का की गलियों में चल के देखें।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
ये बात सच है, हकीकत यही है। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गजवात में मुशरिकों से लड़ा मैं। मगर सच है ये भी, कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आप से है नबी जी। सल्ले अला सैयदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, मक्का की गलियों में चलकर देखें। हज के दिन फिर करीब आ रहे थे, लोग दूर दराज से मक्का पहुंच रहे थे। कुछ दिन में ही मीना की वादी खैमों से सजने वाली थी। मेरे नबी इस साल भी पिछले सालों की तरह पुरअज़म थे कि बाहर से आने वालों तक दावत का पैगाम पहुंचाएंगे, मगर इस साल उन्होंने एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अख्तियार करने का सोचा। दिन में जब भी आप दावत देने के लिए निकले, काफरों ने आपका पीछा किया, आपकी दावत को सबोटाज करने की कोशिश की। अबू लहब पीछे लग जाता था, लिहाजा अब मेरे नबी ने सोचा कि क्यों ना रात की तारीकी में कबाइल के पास जाया जाए, ताकि मुशरिकों की नजरों से ओझल होके अल्लाह ताला के दीन की दावत बआसानी दी जाए। यमन और मुजिर के लोग आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुम्हें पता है, हमें तो हमारे लोगों ने यहां का सफर करने से पहले ही खबरदार किया हुआ है कि कुरैश में एक नौजवान है जो लोगों को फितने में डाल देता है। मेरे नबी जहां से भी गुजर रहे थे, आपकी कौम के लोग आने वालों को आपकी तरफ उंगलियों से इशारा कर करके समझाते थे कि ये है वो जिससे बचना है। मगर ये लोग अपनी जो भी कोशिश कर लें, एक दिन तो होगा जब कोई सुनेगा, कहीं से तो कोई आएगा जो मेरे नबी को अपना लेगा, और वो कितना खुशकिस्मत कबीला होगा जो इंसानियत के सरदार को अपने हाथ ले जाएंगे। ये उनका मेरे नबी पर एहसान नहीं, ये तो मेरे नबी का उन पर एहसान होगा। मैं सोच रही थी वो लोग कहाँ होंगे इस वक्त जिनके भाग जागने वाले हैं। मेरे नबी चलते जा रहे थे और जहां जाते वहां लोगों को अल्लाह का पैगाम देते और आखिर में फरमाते, कोई है जो जन्नत के बदले मुझे पनाह देते और मेरी मदद करे ताकि मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दूं। ये ऑफर ही कितनी जबरदस्त थी, मुझे इतना शौक हुआ, काश मेरे अंदर कोई ताकत होती तो मैं अपने नबी को पनाह देने के लिए अपनी जान तक दे देती। कौन इस जमाने में इस ऑफर को लेने के लिए आगे बढ़ेगा? मैं सोच रही थी, जहां दुनिया का मफाद नजरों के आगे आ जाए, वहां जन्नत भी मामूली लगने लगती है। इसीलिए कोई जन्नत के बदले में भी आपको अपनाने को तैयार नहीं था। मेरे नबी चलते जा रहे थे, आपने कुछ लोगों को देखा एक जगह हलका बनाए बैठे हैं, हस्बे आदत आपने जाके पूछा, आप लोग कौन हैं? वो बोले, हम खजरज की जमात हैं। आपने पूछा कि आप यहूद के हलीफ हैं? वो बोले, हाँ। तब मेरे नबी ने फरमाया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों के पास बैठ जाऊं ताकि मैं आपको कुछ बातें बता सकूं, आपसे कुछ बात कर सकूं? वो बोले, क्यों नहीं। वो एक एक करके सब जमीन पर बैठ गए। मेरे नबी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन की दावत उनके सामने पेश की, कुरान की तिलावत भी फरमाई, और इस दीन को अपनाने पे जो अल्लाह ताला के वादे हैं और जो खुशखबरी हैं वो भी उनको सुनाई। वो लोग बड़े गौर से बात सुन रहे थे और कुछ हैरान भी लग रहे थे। जब मेरे नबी ने अपनी बात मुकम्मल की तो वो आपस में कुछ सरगोशी करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, ये तो वो ही नबी मालूम होते हैं जिनकी आमद की धमकियां यहूद हमें दिया करते थे। दूसरा बोला, मैं तो कहता हूं इनकी दावत फौरन कबूल कर लो, इससे पहले कि यहूद को इनका पता चल जाए, तो वो इन पर हमसे पहले ही मान ले आए। बाकियों ने भी उसकी हां में हां मिलाई। फिर वो मेरे नबी की तरफ मुतवज्जे होके बोले, हम आपका पैगाम कबूल करते हैं। ये कोई 6-7 नौजवान ही होंगे। मेरे नबी को इस छोटी सी जमात के मस्बत जवाब से इस कदर खुशी हुई, आपने उनसे तौहीद की गवाही ली, उनको कलमा पढ़ाया। उनमें से एक बोला, हम अपने पीछे एक ऐसी कौम छोड़कर आए हैं जो जंग में ऐसी है कि इस जैसा कोई और नहीं। मुमकिन है अल्लाह आपकी बरकत से उनमें इत्तेफाक पैदा कर दे। हम उनके पास आपकी दावत का पैगाम लेकर जाते हैं और देखते हैं, हो सकता है वो इस दीन को इख्तियार कर लें। अगर अल्लाह ने उनको भी आपकी रिसालत पर जमा कर दिया तो आपसे बढ़कर बाइज्जत और कोई नहीं होगा। मेरे नबी को ये सुन के बेहद खुशी हुई। मैंने बहुत अरसे बाद अपने नबी के चेहरे पर ऐसी मुसर्रत देखी थी। मेरे नबी ने फरमाया, लेकिन मुहतात रहना, ये ना हो कि किसी को इसकी खबर हो जाए। आज बड़ा सुनहरी दिन था। आज के दिन ये चंद नौजवान इस्लाम लाए थे, लेकिन इन चंद का इस्लाम लाना कहाँ तक खैर पहुंचा देगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। वाकई तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी 6 भी 600 के बराबर हो सकते हैं। कौन जानता था ये 6 अफराद वो काम करेंगे जो हजार भी नहीं कर सकते। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। हज का मौसम खत्म हो गया और इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह, कोई ऐसी काबिले जिक्र कामयाबी मेरे नबी को हासिल ना हो सकी। दिन गुजरते जा रहे थे, मुखालफत उसी तरह जोरों पर थी। ना तो अबू लहब थकता था, ना उसकी बीवी जो कुरैश की औरतों की सरदार थी उम्मे जमील, ये अबू सुफियान की बहन थी, मगर दुश्मनी में सारा खानदान बराबर था। इनको ना तो खानदानी रिश्तेदारी का कोई पास था, ना कबायली रवादारी का। दीन इस्लाम की मुखालफत में ये किसी हद से भी आगे गुजर सकते थे। इनको मेरे नबी से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी तो इनको हक के इस पैगाम से थी जो आप ला रहे थे। आज मेरे नबी इस पैगाम को देना छोड़ दे तो उनको जरा भी मसला नहीं आपकी जात से। मक्का में कुरान की सूरतें एक के बाद एक उतर रही थी, जिनमें इन काफरों के लिए वईद थी, कमजोर मुसलमानों के लिए तसल्ली थी, काफरों के लिए धमकियां थी अजाब की। मगर ये कैसे लोग थे जो टस से मस नहीं होते थे। दरअसल ये सरदार सिर्फ मालदारी नहीं थे, बहुत ताकतवर और असरो रसूख वाले भी थे, और फितने फसाद में तो माहिर थे। पूरे मक्का पे इन्हीं की हुक्मरानी थी, शरीफ लोग तो इनसे डरते रहते थे। लेकिन इसके बावजूद हर दिन कोई ना कोई शख्स इस्लाम ले आ रहा था, जिससे ये मजीद भड़कते थे कि जब हम इस कदर जुल्म सितम इन मुसलमानों पर कर रहे हैं, ये फिर भी बाज नहीं आते। जब नबी की दावत के रास्ते में इतने रोड़े अटका रहे हैं, तब भी ये दावत फैलती ही जा रही है। वो सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, दिन रात सब मिलके हर किस्म की तदबीर को सोचते थे, और जैसे हर कोई एक मिशन पे लगा हुआ था कि कैसे इस दीन के आगे बंद बांधे। मगर जब ये देखते थे कि इनको कामयाबी नहीं हो रही, तो इस कदर फ्रस्ट्रेट होते थे। इन्होंने हर कोशिश करके देख ली थी, जिस्मानी अजियत दे दी, दीनी जहनी भी, धमकियां भी, लालच भी, नेगेटिव प्रोपोगेंडा भी, हर हरबा तो आजमा चुके थे। अब लगता है ये एक तरीका सोच के आए हैं। ये बड़े बड़े सरदार बड़े यकीन के साथ और खुशी के साथ मेरे नबी की तरफ अपने मुतकब्बिराना चाल में चलते हुए आ रहे थे। वो बड़ी शानो शौकत रखते थे इस माशरे में। आते ही वो मेरे नबी के करीब खड़े होके बोले, ए मोहम्मद, क्या फायदा लड़ाई झगड़े का? आप हमारे अपने हैं, बेहतर यह कि हम सुलह सफाई से मामला तय कर लें। मेरे नबी ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा, हमने सोचा है क्यों ना एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कर लें, अगले साल हम सिर्फ एक खुदा की इबादत कर लेंगे, इस तरह से आप भी खुश और हम भी खुश। लड़ाई खत्म हो गई और हम फिर वैसे ही मिलजुल के रहने लगेंगे। मैंने सोचा शायद ये कोई दुनियावी मामलात होते तो ये ऑफर बुरी नहीं थी, सुलह सफाई में रहने में भी खैर ही होती है, मगर यहां मामला तौहीद का था। अभी मेरे नबी ने जवाब भी नहीं दिया था कि यकदम आप पर वही नाजिल होने लगी। मेरे नबी की कैफियत मुख्तलिफ हो जाती थी जब वही नाजिल होती थी। आप पसीने में शराबूर हो गए। जब वही का सिलसिला खत्म हुआ तो मेरे नबी ने कलाम इलाही पढ़ना शुरू कर दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। मैं समझ गई अल्लाह ताला को ये बात गवारा ना हुई, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब देने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जवाब दे दिया। इस दीन में वाकई शिर्क की तो कुछ भी गुंजाइश नहीं। इतनी खुली खुली आयात को सुनने के बाद अब इन सरदारों को आपके जवाब का इंतजार करने की जरूरत ना थी। वो खामोशी से मुंह लटकाए वापस पलट गए। इस्लाम जहां भी होगा अकेला ही होगा, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं जानता। ये मिलावट बर्दाश्त नहीं करता, ये कुफर के रास्तों को मिटा देने वाला है। रात का अंधेरा छा चुका था, मक्का की गलियां आमदोरफ्त से खाली हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था। लोग नींद की आगोश में जा चुके थे। ऐसे में मैंने देखा अबू जहल के घर का दरवाजा खुला और वो नमूदार हुआ। ये इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? वो तेजी से अंधेरे में ऐसे चल रहा था जैसे राजदारी से लोगों की नजरों से बचता बचाता निकल रहा हो, और उसका रुख भी मेरे नबी के घर की तरफ था। मैंने सोचा ये वहां इस वक्त क्या करने जा रहा है? आधी रात गुजर चुकी है, सब लोग गहरी नींद के मजे ले रहे हैं, फिर किस चीज ने इसको बिस्तर से उठाया और ये यूं दौड़ा चला जा रहा है? मैं तेजी से इसके पीछे चलने लगी। जब मेरे नबी का घर करीब आया तो मैंने देखा ये दीवार की ओट में होके, दीवार से लग के खड़ा हो गया। यहां के घर तो बहुत छोटे छोटे थे, कोई दीवार के साथ खड़ा होके अंदर की बातें सुनना चाहता तो सुन सकता था। अंदर से मेरे नबी की तिलावते कुरान की आवाज आ रही थी। आप तहज्जुद की नमाज में कुरान को बड़ी खूबसूरत आवाज से पढ़ा करते थे। मैंने देखा वो बड़े शौक से कान लगा के सुन रहा है। मेरे मुंह से निकला, हाय बदबख्त, तेरे दिल को अगर ये कुरान इतना भाता है तो तू ईमान क्यों नहीं ले आता? क्या चीज तुझे रोकती है? वो सुनता जा रहा था और उसके चेहरे के तासुरात ही बदल रहे थे। पता चल रहा था कुरान इसके दिल में उतर रहा है। जाहिर है दिल में उतरता ही होगा, इसीलिए तो यहां पे छुप के खड़ा सुन रहा है, वरना इसके पास तो इतने बड़े बड़े शायर, काहिन, जादूगरों की बातें बहुत कुछ है, इसको तो वो सुनना चाहिए। मगर ये क्या बात है कि ये काफिर होके कुरान सुनने का शौक रख रहा है? फिर मैं सोचने लगी, मेरे जमाने में तो हम मुसलमान होके भी कुरान को छोड़ के दुनिया जहान की फजूल बातें सुनने बैठ जाते, फजूल प्रोग्राम देखने बैठ जाते और उन्हीं में इतनी दिलचस्पी लेते हैं, कई घंटे गुजर जाते। मैं इसी सोच में चलते चलते मकान की दीवार के साथ दूसरी तरफ पहुंच गई। ये क्या, ये कौन है? कोई और भी खड़ा था वहां, ये कौन है जो यहां छुप के खड़ा हुआ है? मैंने पलट के जाके आगे से देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। ये तो अबू सुफियान है। इसको खबर नहीं कि दूसरी तरफ अबू जहल भी खड़ा है। मैंने देखा दूर मुझे एक और साया भी चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो भी यहीं आ रहा है? मैं तेजी से आगे बढ़ी, देखा तो अखनस बिन शुरैक जो अभी अभी पहुंचा था, उसने दीवार के एक किनारे के साथ लग के मेरे नबी का कलाम सुनना शुरू कर दिया। अंदर से मेरे नबी की इतनी मसहूर कुन आवाज आ रही थी जो सारे माहौल को ऐसा खूबसूरत बना रही थी, इतना पुरअसर बना रही थी कि कोई भी सुन लेता तो उसके दिल में ये कुरान उतर जाता। कौन इसको झुठला सकता था? कौन इसका इनकार कर सकता था? ये अल्लाह का कलाम है और इसका बहुत बड़ा सबूत यही था कि ये लोग यहां खड़े इस कलाम को सुन रहे हैं, वरना ये इंसानी कलाम होता तो इनके पास तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे माहिर शुआरा मौजूद थे, कलाम काहिन मौजूद थे, इनको क्या पड़ी थी कुरान सुनने की, और वो भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से, दिन में जिनके ये दुश्मन बन के रहते हैं। मैं बहुत हैरान थी। इसका मतलब कुरान इनके दिल पे असर कर रहा है, मगर वाकई इंसान की अना है जो हक को कबूल नहीं करने देती, वरना हक तो वाजे है। दिन गुजर रहे थे और पता भी नहीं चला, एक साल और गुजर गया। अगले साल यसरब से 12 लोग मुसलमान घरानों से आए और उन्होंने बताया कि उनके घरों में कोई एक घर भी ऐसा बाकी नहीं बचा जिसमें 8-10 मुसलमान ना हो। ये 12 मुसलमान मेरे नबी से मिलने की ख्वाहिश रखते थे। मेरे नबी ने उनको एक तंग पहाड़ी रास्ते से एक जगह पहुंचने का हुक्म दिया, बड़ी राजदारी के साथ। मक्का से मीना आते हुए ये तंग पहाड़ी रास्ता आया करता है। मैं पहचान गई, जब मैं हज पे आई थी अपने जमाने में, तो यहाँ पे जमराए अकबा था जिसको लोग बड़ा शैतान कहते थे, और मेरे जमाने में इस जगह को तो फ्लैट करके सड़क बना दी गई थी। यहाँ पे इन लोगों ने मेरे नबी से मुलाकात की और इनके चेहरों पे जो खुशी के आसार थे, जो मेरे नबी से अकीदत थी, मोहब्बत थी, इस कदर वालेहाना प्यार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इन लोगों ने मेरे नबी से दरख्वास्त की, आप हमारे साथ किसी को भेज दें जो हमें कुरान सिखाए। इनकी तलब कितनी सच्ची थी, इनके अंदर कितनी तड़प थी कुरान को सीखने की। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजूंगा। मैं सोच रही थी वो कौन खुशकिस्मत होगा जिसको मेरे नबी चुनेंगे, और कुछ दिन बाद ही पता चल गया जब मुसा बिन उमेर इन लोगों के साथ यसरिब को रवाना हुए। अभी तक कुरैश को इन बातों की भिनक भी नहीं पड़ी थी। वक्त गुजरता गया, दूसरा साल आ गया, ये 12वां 13वां 9वीं साल था। अब यसरिब से 70 से ज्यादा मुसलमान हज पर आए हुए थे। ये अपनी कौम के मुशरिक लोगों को भी लेकर आए थे। ये ग्रोह कितना प्यारा है जो ईमान से भरा हुआ है और मक्का के रास्ते में चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला को ये जमात कितनी पसंद होगी, मुआहिदीन की ये छोटी सी जमात। मैं भी इनके साथ हो ली जब ये मक्का में दाखिल हुए। इनमें से एक बोला, हम कब तक रसूलुल्लाह को यूं मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफजदा किए जाते देखते रहेंगे। उसके बाकी साथियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ये देख के मुझे उम्मीद सी हो गई कि अब जरूर दिन फिरेंगे। मेरे नबी का एक आदमी इनके पास आया और बोला, 12 जिलहज्जा को मीना में जमराए अकबा के पास जो घाटी है, उसमें रात की तारीकी में बिल्कुल खुफिया तरीके से आके मिलो। ये नए नए मुसलमान मुलाकात के शौक में इतने खुश हुए जैसे कोई दीवाना हो। यकीनन मुसब बिन उमैर ने इनको बहुत अच्छी तालीम दी है, वरना मेरे नबी से तो ये कभी मिले भी नहीं। और शौके मुलाकात में इनका हाल ये हो रहा है कि इंतजार की घड़ियां ही कट नहीं रही। खुदा खुदा करके वो रात आई गई जो 12 जिलहज की है। आज तो मुझे भी शौक में नींद नहीं आ रही। जब सब लोग सो गए और एक तिहाई रात गुजर गई, तो ये मुसलमान जो 70 के करीब थे चुपके से अपने डेरे से निकले। इनके बाकी साथी गहरी नींद सोए हुए थे। ये दबे पांव ऐसे निकले थे कि जैसे चिड़िया घोंसले से सुकड़ के निकलती है। और इनके साथ मैंने देखा दो औरतें भी हैं। आज की तो ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। ये लोग दबे पांव चलते चलते इस घाटी तक पहुंच गए। सब दुपक कर एक जगह बैठ गए और उस रास्ते की तरफ निगाहें जमा दी जहां से मेरे नबी ने आना था। कुछ ही देर गुजरी थी कि दो साए चलते हुए नजर आने लगे। जब वो करीब आए तो मैंने देखा एक मेरे प्यारे नबी हैं और उनके साथ उनके चचा अब्बास हैं। लेकिन अब्बास तो अभी मुसलमान भी नहीं हुए, फिर ये क्यों साथ आ गए? मैं समझ ना पाई, मगर थोड़ी देर में सारी बात खुल गई। वो अपने भतीजे के बारे में इत्मीनान कर लेना चाहते थे। अंसार ने जब मेरे नबी को देखा तो वो खड़े हो गए और बहुत खुशी के साथ मेरे नबी का इस्तकबाल किया। इसके बाद ये सब बैठे तो अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाने लगे, तुम जानते हो कि तुम इनसे किस बात पर बहस कर रहे हो? मदीना के ये लोग बोले, जी हाँ। अब्बास ने कहा, तुम इनसे सुर्ख और सियाह लोगों से जंग पर बहस कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि जब तुम्हारे मालों का सफाया कर दिया जाएगा और तुम्हारे सरदार कत्ल कर दिए जाएंगे तो तुम इनका साथ छोड़ दोगे, तो अभी छोड़ दो। क्योंकि अगर तुमने उनको ले जाने के बाद इनको छोड़ा तो ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई होगी। और अगर तुम्हें ये ख्याल है कि तुम माल की तबाही और अपने सरदारों के कत्ल के बावजूद अहद निभाओगे जिसकी तरफ तुमने इन्हें बुलाया है, तो फिर बेशक तुम इनको ले जाओ। ये दुनिया और आखिरत की भलाई है। अंसार सारी बातें सुन रहे थे। सुनने के बाद सबने एक आवाज होके कहा, हम माल की तबाही और अपने सरदारों के कतर का खतरा मोल लेकर इनको कबूल करते हैं। उनमें से एक बोला है, अल्लाह के रसूल, हमने अगर ये अहद पूरा किया तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत। अब लोग कहने लगे, आप अपना हाथ बढ़ाएं, हम बैत करते हैं, हम बैत करते हैं। मुझे ये सब देख के बेइंतहा खुशी हुई। अब्बास की बात वैसे ठीक थी, वाकई कह तो सही रहे थे। ये जरूरी था इत्मीनान करना कि ये लोग जो आज शौक शौक में मेरे नबी को साथ लेकर जा रहे हैं, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे नबी के दुश्मन जब उनके पीछे वहां पहुंच जाएंगे तो ये उनको छोड़ दे और अपनी जान छुड़ा ले। इन लोगों में एक नौजवान ने कहा, हमने बात सुन ली है, अब ऐ अल्लाह के रसूल, आप जिस चीज का हमसे वादा करना कराना चाहते हैं आप हमसे वो वादा ले लें। या अल्लाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह की मदद इस तरह भी आ सकती है। इतने मुखलिस लोग मिल सकते हैं जो अपनी जान, माल, घर बार, खानदान सब की परवाह किए बगैर मेरे नबी को अपनाने को तैयार हो जाए, हर किस्म का खतरा लेने को तैयार हो जाए। मैंने सोचा है उम्मते मुस्लिमा, तू कभी भी इन मदीना वालों के एहसान का बदला नहीं चुका सकती। जब हर कोई मुखालिफ हो, जब हर तरफ से ठुकराया जा रहा हो, उस वक्त कोई आगे बढ़ के ये कह दे कि मैं सर धड़ की बाजी लगा दूंगा मगर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये कितनी बड़ी बात थी। ये बात वो ही जान सकता था जो इन हालात से गुजर रहा हूं। मेरे नबी ने इनसे बैत ली और फरमाया, अगर तुम इसको निभाओगे तो जन्नत की बशारत है। मेरे नबी ने इनसे बैत ली कि ये आपकी हिफाजत भी वैसे ही करेंगे जैसे अपने बाल बच्चों की करते हैं, और इन्होंने इस बात को माना और कहा, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बना के भेजा है, हम यकीनन आपकी मदद करेंगे जैसे अपने बाल बच्चों की करते हैं। उन्होंने कहा, है अल्लाह के रसूल, आप हमसे बैत लीजिए और परवाह ना करें, खुदा की कसम हम जंग के बेटे और हथियार हमारा खिलौना है। मैंने ये सुना तो मेरे मुंह से बेख्तियार नारा तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर, ये हैं असल जान निसार, ये हैं असल इस्लाम के बहादुर बेटे। एक आदमी आगे बढ़ा और बड़ी मोहब्बत से बोला, ए अल्लाह के नबी, कल को अल्लाह ताला आपको गलबा दे देगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें तब छोड़ के वापस अपनी कौम की तरफ पलट आए। मैं इनकी वालेहाना मोहब्बत को देख के मुस्कुरा दी और मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई। ये वाकई मेरे नबी के जान निसार साथी बनने वाले हैं। इनके अंदर जो मोहब्बत का शोला भड़कता हुआ मैंने देखा है अपने नबी के लिए, इसको अब कोई नहीं बुझा सकता। मेरे नबी ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और आपको बड़ी खुशी हुई। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बल्कि आपका खून मेरा खून है, आपकी बर्बादी मेरी बर्बादी है, मैं आप में से हूं और आप मुझसे हैं, जिससे आप जंग करें मैं जंग करूंगा और जिससे आप सुलह करेंगे मैं उससे सुलह करूंगा। और ये लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आपके हाथ पे बैत करने लगे। जब काम मुकम्मल हो गया तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बिखरने वाले थे कि एक शैतान कहीं से आ गया, उसको पता चल गया था यहां पे क्या हो रहा है। ये तो शुक्र है कि ये आखिर में आया, कहीं शुरू में आता तो सब कुछ ही सुन लेता। अब इसको बस इतना ही मौका मिला कि आखिर की बातें सुन के ये यहां से भागा और इसने जरा भी एक लम्हे की देर भी नहीं लगाई, फौरन एक ऊंची जगह पे खड़ा होके चीखने लगा, खैमे वालों मोहम्मद को देखो, इस वक्त बेदीन इसके साथ है और ये तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं। मेरे नबी ने मदीना वालों से कहा, तुम जल्दी से अपने खैमों में चले जाओ। वो शैतान बुलंद आवाज से ये ऐलान कर रहा था और कुरैश के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई थी, लेकिन जब तक वो भागे दौड़े आए उस वक्त तक मदीना वाले चुप करके अपने खैमों तक पहुंच चुके थे। मगर मुखबिर ने उनको बता तो दिया था कि यहां क्या हुआ है, इसलिए उनमें कोहराम मच गया। अभी सुबह करीब ही थी, उन्होंने सोचा सुबह होते ही हम जरा इनकी खबर लेंगे। अभी सुबह हो रही थी कि मैंने देखा ये बड़े बड़े सरदार इस तरफ चले आ रहे हैं। वो आके बोले, खजरज के लोगों, हमें पता चला है तुम हमारे आदमी को हमारे दरमियान से ले जाने के लिए आए हो और हमसे जंग करने के लिए उसके हाथ में बैत कर रहे हो। अब जो मदीना से आने वालों में मुशरिक थे उनको तो इस बात की कानों कान खबर भी ना थी, क्योंकि मुसलमान तो रात को मुकम्मल राजदारी से उठ के गए थे। लिहाजा मैंने देखा वो तो कसमें खाने लगे, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो मुसलमान थे वो बिल्कुल खामोश थे, ना हाँ में जवाब दे रहे थे ना ना में। वो यहां से अब्दुल्ला बिन उबई के पास गए और उससे पूछ पड़ताल शुरू कर दी। ये भी जो अभी तक मुशरिक ही था, इसको भी रात के वाके का कुछ इल्म नहीं था। इसने उनको इत्मीनान दिलाया कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, किसी ने ऐसे ही उड़ा दी है, इसलिए कि मेरे लोग तो मुझसे मशवरा किए बगैर कुछ काम नहीं करते। ऐसे में जो मुसलमान थे वो कनखियों से एक दूसरे को देख रहे थे मगर खामोश थे। कुरैश के सरदार ये सब सुन के पलट तो गए मगर लगता था उनको अभी इत्मीनान नहीं हुआ, वो शक में तो पड़ चुके थे। जो भी है, मेरा दिल आज बहुत खुश था। मैंने आज मदीना के लोगों की आंखों में जो मोहब्बत अपने नबी के लिए देखी है, जो वफादारी के जज्बात देखे, इससे मेरा दिल मुतमईन था। और इन लोगों के अंदर जो जज्बा कमजोर मक्की मुसलमानों के लिए था और उनकी हिमायत का जो जोश था और इन जुल्म करने वालों के खिलाफ जो गम और गुस्सा था, इसे वाकई ये पता चलता था कि ईमान इनके दिलों में मजबूत हो चुका है और ये ईमानी रिश्ते में इन मुसलमानों के साथ बंध चुके हैं, इसीलिए इनके लिए तड़प रहे हैं। मैं सोच रही थी वाकई कितना खूबसूरत होता है ईमान का रिश्ता। यहां तक आज का एपिसोड मुकम्मल होता है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।
हाँ ये बात सच